सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की कृपा से हम लोग पंचदशी के सातवें प्रकरण में 214 तक हम लोगों ने क्या है चिंतन किया था, यहां तक आए थे हम लोग। तो कल चिंतन किया था हम लोगों ने जागृत आदि जो प्रपंच है, उस जागृत आदि प्रपंच को प्रकाशित करने वाला जो ब्रह्म है वह ब्रह्म मैं हूं, ऐसा जो जानता है वह सभी बंधनों से मुक्त होता है। और ये कह दिया वही जो ब्रह्म मैं हूं और वो एक ही है, यह अंतिम श्लोक में 14वें श्लोक में बताया एक एव आत्मा मन्तव्यो, वह एक ही आत्मा है, ऐसा जो जानता है जागृत आदि अवस्थाओं में सभी अवस्थाओं में वो एक ही आत्मा है। जो जागृत वाला है वही स्वप्न में है, जो स्वप्न वाला है वही निद्रा में है, सभी जगह। इसलिए क्या है वो स्थानत्रय को क्या करता है अतिक्रमण करता है, उससे वो अतीत है उसका, ये सब अतीत हो जाते हैं उसका अतिक्रमण कर देता है। इनसी जो अतीत जो ब्रह्मा उसको क्या है एक रूपेण जानता है, वो एक ही है, उसका क्या है पुनर्जन्म नहीं होता है, ऐसा हम लोगों ने कल चिंतन किया था। इसके आगे कहते हैं, उच्चारण कर लीजिए श्लोक का, त्रिषु धामसु यद भोग्यम् त्रिषु धामसु यद भोग्यम् भोक्ता भोगश्च यद भवेत् भोक्ता भोगश्च यद भवेत् तेभ्यो विलक्षण साक्षी तेभ्यो विलक्षण साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः। जिनको जानने से आत्मरूपेण तो क्या होता है जन्म मरण से वो निवृत्त हो जाता है, पुनर्जन्म नहीं होता है। तो जिसको जानने से पुनर्जन्म नहीं होता है ठीक है, वो साक्षी है असंग है, क्या इतने मात्र से उसको जानना है क्या? क्योंकि संसार में सभी लोग जो है आनंद के लिए सब कुछ करते हैं ना, कल्याण के लिए करते हैं, तो जानना ही क्या है कल्याण है। क्यों कल्याण है? क्योंकि वो कल्याण रूप है, शिव रूप है, शिव मतलब कल्याण रूप है। इसी के विषय में आ कहते हैं त्रिषु धामसु यद भोग्यम, अर्थात धामसु अर्थात जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इनको धाम शब्द ने शब्द के द्वारा उल्लेख करते हैं। त्रिषु धामसु अर्थात जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप जो धाम है उन धामों में क्या है यद भोग्यम, अर्थात जो स्थूल शरीर और इस स्थूल संबंधित अन्य जो विषय है वो लीजिए, और भोक्ता, भोक्ता मतलब जो भोग करने वाला, और भोगश्च, भोग क्या है आनंद। तो कहते हैं तेभ्यो विलक्षण, अर्थात भोग्य, भोक्ता और भोग, इनसे वो कैसा है? विलक्षण। कौन? साक्षी रूप, ब्रह्म रूप आत्मा, उनसे विलक्षण है। विलक्षण कैसा है? क्योंकि तीनों में क्या है? संगता है, और उस साक्षी आत्मा ब्रह्म में असंगता है। उन तीनों में जड़ता है और इस ब्रह्म आत्मा में क्या है? चेतनता है। वो प्रकाशन उनके द्वारा हो नहीं पाता है। मात्र प्रकाशन किसके द्वारा होता है? आत्मा के द्वारा होता है। इसलिए कैसा है वो? उससे विलक्षण है। तिभ्यो विलक्षण है, उनसे विलक्षण है। साक्षी कौन? वो उनसे क्या है? विलक्षण। जो साक्षी है वो कैसा है? चिन्ह मात्रो, वो चिन्ह मात्र है, अर्थात ज्ञान रूप मात्र है। चिन्ह मात्र मतलब ज्ञान मात्र है, वो ज्ञान के सिवा वो नहीं है, चिद रूप मात्र है। और वो चिद रूप अहम, वो मैं हूं। कैसा है वो जो मैं? तो सदाशिव, जो मैं चिदमात्र, वो कैसे है? तो कहते सदाशिव, अर्थात सदा हमेशा तीनों कालों में कल्याण रूप है। अजय स्वयं ही कल्याण रूप है, तो उसके लिए और अपना कल्याण करने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तो स्वतः कल्याण रूप है ना, तो अपना कल्याण किसे चाहेगा? और किसी से चाहेगा नहीं। जैसे सूर्य स्वयं कैसा है? वो उसका स्वरूप ही प्रकाश है, तो और किसी प्रकाश की अपेक्षा करेगा क्या? नहीं है। हाँ, जिसके पास प्रकाश नहीं है वो अपेक्षा करेगा। जैसे मान लीजिए इस हॉल में अंधकार है, तो इस अंधकार वाला जो हॉल है ये प्रकाश का अपेक्षा करता है, परंतु जो स्वयं प्रकाश है वो किसी प्रकाश की अपेक्षा नहीं करता है। इसी प्रकार वो जो चिन्ह मात्र आत्मा है, साक्षी है, वो कैसा है? सदाशिव, हमेशा कल्याण रूप है, कल्याण स्वरूप है। इसलिए उसको अपना कल्याण के लिए किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो साक्षी ब्रह्मा आत्मा हमारे लिए मुख्य है, हमारे लिए विशेष है, हमारे लिए महत्व का है। टीका देख लीजिए। त्रिषु धामसु त्रिषु स्थानेषु, त्रिषु धामसु का अर्थ करता है त्रिषु मतलब तीन अवस्थाओं में, और तीन अवस्था ही क्या है? धाम है अर्थात स्थान। यद भोग्यम, जो भोग्य है वो क्या है? तो यद भोग्यम का अर्थ करता है स्थूल, सूक्ष्म, आनंद, स्थूल परिव्यक्त। स्थूल से अलग कौन हो गया? सूक्ष्म। और इसके बाद और कौन है उससे सूक्ष्म? आनंद। आनंद स्थूल हो गया एक, उससे भी व्यक्त हो गया सूक्ष्म, और उससे भी एक अलग हो गया आनंद। ये तीनों के तीनों क्या है? भोग्य। कहिए ना, इन तीन धामों में जो भोग्य है वो भोग्य क्या वस्तु हो गई? स्थूल एक भोग्य है, और उस स्थूल से भी एक सूक्ष्म है वो भी एक भोग्य है, और उस सूक्ष्म से भी आगे है एक आनंद, उसको सुख भी कह सकते आप, वो भी कैसा है? भोग्य। ये भोग्य आनंद रूपा यद रूपम यद यश्च भोक्ता, उसके बाद जो एक भोक्ता है, ये हो गए तीनों भोग्य। उसके बाद भोक्ता वो कौन है? विश्व तेजस प्राज्ञ रूपो, भोक्ता कौन हो गया? जागृत में विश्व, स्वप्न में तेजस, और निद्रा में प्राज्ञ। एक ही भोक्ता के अलग अलग क्या है? नाम हो जाते हैं। जागृत अवस्था में जो भोक्ता है उसका नाम क्या हो गया? विश्व हो गया। और वही विश्व जब स्वप्न में भोग करता है तो उसी भोक्ता का नाम क्या हो गया? तेजस, और फिर उसी भोक्ता का नाम निद्रा में प्राज्ञ हो गया। अलग अलग स्थानों में जाने के कारण क्या उसका अलग अलग नामकरण होता है, उसका कार्य भी अलग अलग होता है। व्यक्ति एक ही होता है, घर में उसका नाम अलग है, ऑफिस में नाम उसका अलग है, क्योंकि स्थान भेद होने के कारण उसका नाम उसका कार्य अलग हो जाता है, उसका परिणाम भी अलग हो जाता है। इसी तरह इस भोक्ता के विषय में कहते हैं वो विश्व रूप है, वो तेजस रूप है और प्राज्ञ रूप है। यश्च और कहते हैं यश्च और जो कुछ है कौन भोग, वो भोग क्या है तो कहते तद अनुभव रूप। अनुभव ही क्या है भोग है। तो ऐसे भोग्य भोक्ता और भोग ये विद्यन्ते जो विद्यमान है ये तीनों की तीनों किसमें है इन स्थान त्रयों में। तेभ्य स्थानादिभ्यो विलक्षणों इनसे विलक्षण इन स्थान त्रयों से और उन स्थान त्रयों में भोक्ता भोग्य और भोग इनसे विलक्षण। यश्च चिन्मात्र रूप वो कौन है चिन्मात्र रूप इनसे विलक्षण जो है वो चिन्मात्र रूप कौन साक्षी। वो साक्षी कैसा है उसका रूप क्या है उसकी प्रकृति क्या है उसकी प्रकृति है सदाशिव अर्थात उसकी प्रकृति उसका स्वभाव उसका स्वरूप कल्याण है। अच्छा वो जो कल्याण है सदाशिव रूपता है उसकी सापेक्षकृत है क्या तो कहते हैं नहीं निरतिशय और निरतिशय है आनंद रूपत्वेन। वो जो उसमें वो जो कल्याण रूपता है उसमें वो निरतिशय है। क्यों निरतिशय है क्योंकि वो उसका जो स्वरूप है आनंद रूप वो निरतिशय है। वो अपना निज उसका स्वरूप वो कैसा है आनंद वो निरतिशय है। उसका स्वरूप निरतिशय जो आनंद है वो निरतिशय होने के कारण वो कैसा है वो सदाशिव निरतिशय उसको कहते हैं जो किसी की अपेक्षा को लेकर के नहीं आता स्वभावतः होता है अपने आप में ही। जैसे विषय आनंद किससे अपेक्षित है वो हाँ। तो वो हो गया सातिशय माने किसी की अपेक्षा को लेकर के जो आता है वो सातिशय सातिशय किसी की अपेक्षा को लेकर के आता है और जो किसी अपेक्षा से नहीं है वो निरतिशय है और जो किसी की सापेक्षा नहीं करता है वो स्वरूप होता है। क्या होता है स्वरूप होता है। तो ये जो आनंद है किसका उस अपने आत्मा का साक्षी का वो आनंद कैसा है निरपेक्ष है निरतिशय है उसमें अतिशयता नहीं है अथवा जिसमें अतिशयता होती है वो समाप्त होता है और जो निरतिशय होता है वो कभी समाप्त होता नहीं है क्योंकि जो भी किसी की अपेक्षा को लेकर के आता है वो सातिशय होता है और जो सातिशय होता है वो उसकी समाप्ति है किंतु जो निरतिशय होता है अपेक्षा से रहित होता है वो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है सर्वदा कहते हैं वो सर्वदा है वो और निरतिशय होने के कारण उस आत्मा का उस साक्षी का जो चिदरूप है वो चिदरूप जो आत्मा है वो कैसा है आनंद रूप है और आनंद रूप कैसा है वो निरतिशय है और निरतिशय होने के कारण ही वो कैसा है सर्वदा शोभमान वो शोभनीय है अत्यंत सुंदर है वो। तो ऐसा शोभमान वो कौन हो सकता तो परमात्मा वो निरतिशय आनंद रूप साक्षी कौन हो सकता है परमात्मा। अब वो परमात्मा अस्ति वो परमात्मा कौन है? वो मैं हूँ। सो अहम अस्मि, वही परमात्मा मैं हूँ, मैं अलग नहीं हूँ, मैं ही स्वयं परमात्मा हूँ। ऐसा जान लेने पर क्या हो जाता है? ऊपर वाले श्लोक में बताया, उसका फिर जन्म होता नहीं है, उसको कोई बंधन रहता नहीं है। आगे कहते हैं, एवं विवेकेन आत्मतत्वे असंगे। इस प्रकार से अभी तक जो अभी हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं, वो एवं शब्द का अर्थ हो गया। एवं मतलब इस प्रकार से, क्या है? विवेकेन, ऐसा हमने जो विवेक किया है, क्या विवेक किया है? अन्वय व्यतिरेक के द्वारा विवेक किया है, उसका अनुभव के द्वारा भी हमने क्या है उसको समझ लिया है, और क्या है प्रमाण के द्वारा, अर्थात श्रुति प्रमाण के द्वारा भी क्या हमने समझ लिया है। तो विवेक है ना, अर्थात विवेक के द्वारा आत्मतत्व असंगे, विवेक के द्वारा आत्मतत्व कैसा है? असंग है। ऐसा निर्णय करने पर क्या है? निश्चय करने पर क्या है? सती भोक्तृत्व कस्य, फिर भोक्ता कौन होता है? यदि वो साक्षी आत्मा वो असंग है, असंग है तो फिर भोक्ता कौन हो गया? क्योंकि असंग तो भोग कर ही नहीं सकता, फिर भोक्ता किसको कहना है? यहां तो ऊपर वाले श्लोक में तीन बताए ना, भोग्य, भोक्ता और भोगस्य। तो फिर भोक्ता कौन बनेगा? भोक्तृत्व कस्य, भोक्तृत्व किस में आएगा? कहते इत्यतः आह, इसी विषय में कह रहे हैं, जो शंका हुई है कि जो आत्मा असंग है, साक्षी है, वो कैसा है? इन सभी से भिन्न है, भोक्ता से भी भिन्न है, भोग्य से भी भिन्न है, और क्या है भोग से भी भिन्न है। तो फिर भोक्ता कौन बनता है? लोग तो हम तो यही चर्चा करते हैं, हम भोक्ता है, हम भोग कर रहे हैं। यहां तो कह रहे हैं कि वो साक्षी आत्मा हम है, और साक्षी आत्मा जो है वो भोग करता नहीं है, वो तो असंग है, असंग कभी भोग कर नहीं सकता, फिर भोक्ता किसको कहना है? इसके विषय में चर्चा करते हैं 16वें श्लोक में। एवं विवेचिते तत्वे, एवं विवेचिते तत्वे, विज्ञानमय शब्दितः, विज्ञानमय शब्दितः, चिदाभासो विकारियो, चिदाभासो विकारियो, भोक्तृत्वं तस्य शिष्यते, भोक्तृत्वं तस्य शिष्यते। कहते हैं एवं विविचिते तत्वे, जब उस आत्मतत्व का अर्थात साक्षी का, कूटस्थ का क्या है हम लोगों ने विवेचिते, उसका विवेचन किया हमने, अलग अलग करके हमने देखा। विवेचन करने के बाद तत्व का हमने विवेचन किया, विवेचन करने के बाद भोक्ता किसको कह दिया है? तो कहते विज्ञानमय शब्दितः। इससे पहले एक श्लोक आया है, 198 वाला नंबर वाला श्लोक है, उसमें क्या कहा है भोक्ता कौन है उसके बारे में बताया। देख लीजिए पीछे 198। आत्मा कतम इत्युक्ते याज्ञवल्क्यो विबोधयन् विज्ञानमयम् आरभ्या संगम तम पर्यशेषतः। वहां पर उल्लेख किया, यदि आपको ध्यान में रहेगा तो समझ में आएगा। वो विज्ञानमय आत्मा क्या है? भोक्ता है। अर्थात चिदाभास। चिदाभास कौन है? भोक्ता है। चित भोक्ता नहीं है। कौन भोक्ता है? चिदाभास। वो चिदाभास भोक्ता है। अर्थात भोक्ता किसको कहते हैं? तो यहां ग्रंथकार कहते हैं कि हमने विज्ञानमय शब्द के द्वारा जिसको बताया है वो भोक्ता बनता है, चिद साक्षी भोक्ता नहीं बनता है। चिदाभासो विकारी, जो चिदाभास विकारी वही कौन है? भोक्ता। यो भोक्तृत्वम तस्य शिष्यते। भोक्तृत्व किस में आता है? चिदाभास में आता है, जो चित में नहीं आता है। एवं इति टीका देख लीजिए। यो विज्ञान शब्देन, अर्थात विज्ञानमय शब्द के द्वारा क्या है, इससे पहले क्या है, विधीयमान उसका कथन किया है, चिदाभास तस्य विकारित्वात् भोक्तृत्वम्। मन में होगा कि फिर वो चिदाभास भोक्ता है, ठीक है, तो चिदाभास भोक्ता क्यों है? क्योंकि वो विकारी है। जो जो विकारी होता है, जो चिदाभास, वो चिदाभास क्या है? भोक्ता बनता है। विकारी तो ये भी है, जड़ वस्तु भी विकारी है, परंतु ये उस जो चिदाभास के जैसा ये नहीं है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब दर्पण में आने के बाद वो क्या करता है? सूर्य जैसा ही काम करता है, किंतु वो सूर्य तो नहीं ना, सूर्य तो सूर्य नहीं हो सकता है, सूर्य जैसा है। इसी प्रकार चित्त का प्रतिबिंब किसमें है? बुद्धि में। इसलिए क्या है वहां पर? चित जैसे वहां दिख रहा है, वही चिदाभास क्या है? भोक्ता बनता है, विशेष काम करने लगता है। जैसे मान लीजिए सूर्य जो ऊपर से तपा रहा है, और जो तपाने वाला सूर्य वो आग नहीं लगाता है, किंतु कांच में आया हुआ सूर्य विशेष हो गया ना काम। इसी तरह जो चिद रूप आत्मा है, साक्षी है, वो भोग नहीं करेगा, किंतु उसी चिद रूप आत्मा का जब प्रतिबिंब आता है उसका नाम चिदाभास हो जाता है, वो विशेष काम करने लगता है। कहने का तात्पर्य क्या? जब उपाधि में जब आता है चित, तो वो चिदाभास कहलाता है। वो ऐसा चिदाभास क्या करता है? विशेष काम करता है। जैसे सूर्य कांच रूप उपाधि में आने के कारण क्या है? विशेष उसने क्या है? कार्य शुरू कर दिया। ये आकाश है, ये आकाश पानी को तो धर नहीं सकता ना, पकड़ सकता है नहीं, किंतु तो वही आकाश जो उपाधि के घेराव में आ जाता है, उस आकाश में जल बैठ सकता है कि नहीं? आकाश जल कहां बैठ रहा है? घड़े में है जल, घड़े में जल नहीं है तो घड़ा क्या कर रहा है? बस पानी को बिखरने से बचा रहा है, इतना ही काम कर रहा है। यदि उपाधि नहीं होती, घड़ा रूप उपाधि नहीं होती, तो जल ठहरने की क्या है? संभावना नहीं है। जल जो ठहर रहा है उसका कारण क्या है? उपाधि। तो जो ठहरा है जल, परंतु जो जल ठहरा है वहां पर, उसका एक मूल कारण कौन है? आकाश भी है ना? तो विशेष कार्य हो गया ना आकाश में। पहले तो जल नहीं रह रहा था, कि तो उपाधि आ गई। अब उपाधि आने के कारण उस आकाश में जल आ रहा है। जैसी उपाधि में आ जाता है तो व्यक्ति क्या है? उस वो विशेष काम करने लगता है, जो भी व्यक्ति। अभी हम आप लोग सर्वसामान्य हम आप लोग हैं, तो हम लोगों के लिए उपाधि नहीं है, किंतु प्रधानमंत्री के लिए उपाधि है, तो उनके द्वारा विशेष काम हो रहा है। यहां संस्था में कोई अध्यक्ष होंगे, उनकी उपाधि है, तो उनके द्वारा एक विशेष काम हो रहा है। मतलब जिसके पास जो जो उपाधि है उस उपाधि के अनुसार क्या उसका काम होता है, और जिसके पास कोई उपाधि नहीं है उसके द्वारा कोई भी काम होता नहीं है। तो चिदाभास जो भोक्ता बन रहा है तो क्या हो गया, विशेष काम हो गया उसके द्वारा। चित क्या है, किसी एक उपाधि में आ गया माने भाषित हो रहा है, इसलिए वहां पर विशेष काम हो रहा है। कौन सा, भोक्ता का काम हो रहा है, भोक्तृत्व उसमें आ रहा है। ननु चिदाभासस्य भोक्तृत्व अंगीकारे, यदि चिदाभास को हम भोक्ता स्वीकार कर लेंगे, चिदाभास को हम भोक्ता मानेंगे, तो कस्य कामाय इति वचो भोक्तृ अभाव विवक्षया इति पूर्वोक्तम व्याहन्येत। कहता है यदि चिदाभासी ही भोक्ता है ऐसा स्वीकार करते हैं, तो जो ये प्रकरण जिस मंत्र से आरंभ हुआ था उस मंत्र में क्या कहा था, कस्य कामाय, वो किस मिथ्या वस्तु को लेकर के परिश्रम करेगा, क्यों तपाएगा अपने आप। ज्ञानी जो है कस्य काम है मतलब किस मिथ्या वस्तु को लेकर के और किस मिथ्या वस्तु की इच्छा करके वो शरीर को तपाएगा, अर्थात वो नहीं तपाएगा, वो शांत बैठेगा। तो वहां जो कह दिया था कि कस्य काम आय, तो वहां जो कह दिया वो क्या बात है, क्योंकि वो तो उसको सब कुछ क्या मिथ्या दिख रहा है, और मिथ्या वस्तु के लिए क्यों वो परिश्रम करेगा, क्यों मेहनत करेगा। तो यहां पर जो चिदाभास को भोक्ता कह दिया, तो ये जो भोक्ता कह दिया तो कहते ये जो भोक्ता उसमें आ गया, और वहां तो कह रहे हैं वो किसी के लिए कुछ करता नहीं है, चिदाभास भोक्ता बन गया, परंतु भोक्ता बन रहा है तो किंतु वहां तो ज्ञानी के लिए तो कुछ रहा ही नहीं है, फिर भोक्ता कैसे रहेगा। तो कहता है इति वचो भोक्तृ अभाव विवक्षा, ये जो वचन है ना कस्य कामाय, अर्थात किस मिथ्या वस्तु के लिए वो इच्छा करेगा, तो वहां कहता है वहां पर एक ही कहना, वहां पर यही बात कहनी है उस मंत्र के द्वारा, क्या कहना है, भोक्तृ अभाव की बात कहनी है, अर्थात भोक्तृ का अभाव दिखाना। किस मंत्र में, जो जिस मंत्र से प्रकरण आरंभ हुआ, भोक्ता का अभाव दिखाने के लिए क्या वहां पर कहा जा रहा है, ना कि भोक्ता इसके लिए कहा जा रहा है, वास्तविक भोक्ता नहीं है। पूर्वोक्तम व्याहन्येत इति आशंका, जो पूर्व बात कही थी कैसे, ये पहले वाले 198 श्लोक में बताया भोक्ता है एक, कौन, चिदाभास, और यहां कह रहे कि वो ज्ञानी की दृष्टि से कुछ है नहीं है, ना भोक्ता है ना भोग्य है, फिर क्या है, बात दो दो बात बन रही ना, एक जगह आप भोक्ता भी एक कह रहे, एक भोक्ता नाम की चीज है, और जब ज्ञान प्राप्त होता है तो उसकी दृष्टि से कुछ रहता ही नहीं है, तो वचन में क्या हो रहा है, वो व्याघात हो रहा है ना, वचन आपका खंडित हो रहा है। तो कहते हैं तस्य वचनस्य पारमार्थिक भोक्तृत्व अभाव परत्वम, वास्तविक देखा जाए वो जो वचन आया है, जिस वचन से प्रकरण आरंभ हुआ है, वो वचन वास्तविक रूप से, पारमार्थिक मतलब वास्तविक रूप से, भोक्तृ का अभाव दिखाने के लिए ही है, कोई भोक्ता नाम की कोई चीज नहीं है, भोग्य नाम की कोई चीज नहीं है, ये सब ये दिखाने के लिए मंत्र है। इस अभिप्राय से क्या वहां पर बताया, भोक्तुः चिदाभासस्य मिथ्यात्वं साधयति, तो फिर उस भोक्ता जो चिदाभास है, तो वो भोक्ता चिदाभास कैसा है, फिर वो कहते हैं मिथ्या है, उस मिथ्यात्व को साधने के लिए यहां पर श्लोक आ रहा है, क्योंकि अब हम आज तक तो हम जो हम कह रहे हैं हम भोग करते हैं, तो जब भोग करते तो हम क्या मान रहे हैं, अपने आप को मिथ्या मानते हैं क्या? हम चेतनी मान रहे हैं ना, अरे ये व्यक्ति भोग कर रहा है, बढ़िया भोजन कर रहा है, पंच पकवान का भोग कर रहा है, तो वो क्या मिथ्या है क्या? मिथ्या नहीं ना, किंतु उसको मिथ्या सिद्ध करना है। वो तो चैतन्य आत्मा के साथ तादात्म्य करके हम क्या है बोल रहे हैं कि ये क्या भोग कर रहा है, भोजन क्या है ले रहा है, उसी को साधने के लिए। किसको साधने के लिए? चिदाभास को मिथ्यात्व साधने के लिए ये सत्रवा श्लोक आ रहा है। मायिको यम चिदाभास, मायिको यम चिदाभास, श्रुतेरनुभवादपि, श्रुतेरनुभवादपि इन्द्रजालं जगत्प्रोक्तम्, इन्द्रजालं जगत्प्रोक्तम् तदन्तपात्ययम् यतः, तदन्तपात्ययम् यतः। मायिको अयम् चिदाभास, ग्रंथकार कह रहे कि ये जो चिदाभास है क्या है, तो कहते मायिक है। मायिक है का अर्थ मृषा, अर्थात मिथ्या है। तो ये ग्रंथकार मात्र कह रहे क्या नहीं है, श्रुति भी कहती है। अच्छा, श्रुति कहते ही है तो इतने से हम मान ले क्या? तो नहीं, अपना अनुभव भी है। कैसा अनुभव है बताएंगे। इंद्रजालम जगत प्रोक्तम, ये संपूर्ण जगत कैसा है? इंद्रजाल है। तो जब संपूर्ण जगत ही इंद्रजाल है तो उस जगत का अंतःपाती कौन हो गया? चिदाभास। वो भी क्या हो जाएगा फिर? मिथ्या होगा, हो जाएगा ना। जो इंद्रजाल होता है, इंद्रजाल के द्वारा जो निर्मित होता है वो कैसा होता है? मिथ्या। जो भी वस्तु मिथ्या होगी। इसी तरह ये क्या है? इंद्रजाल है। कौन? संपूर्ण जगत। और उस जगत के भीतर फिर कौन आ गया? चिदाभास। तो वो भी मिथ्या होगा क्या? नहीं, मिथ्या होगा। इंद्रजालम जगत प्रोक्तम, ये जगत पूर्ण क्या है? इंद्रजाल के समान है, अर्थात मिथ्या है। और उस जगत के तदंत पात्ययम यतः, और उस जगत के अंतपाती चिदाभास होने के कारण वो चिदाभास भी क्या है? मिथ्या है। मिथ्याई का मतलब क्या है? मिथ्या शब्द का अर्थ वर्तमानत्वम, मात्र वर्तमान में ही दिखे, होना नहीं, मात्र दिखना, न भूतकाल में न भविष्यकाल में, वर्तमान काल में दिखे, उसका नाम क्या है? मिथ्या। जैसे अभी वर्तमान काल में हम देख रहे हैं, जैसे वर्तमान का जो शरीर है ये कैसा है? मिथ्या। क्यों मिथ्या? क्योंकि भूतकाल में था नहीं और भविष्य में, इसलिए कैसा है? मिथ्या। जो भी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा दृष्टिगोचर वस्तु है वो सब कैसी है? मिथ्या। क्यों? क्योंकि उसकी स्थिति वर्तमान में ही है, ना भूतकाल में थी न भविष्य में है, बस वर्तमान में उसकी स्थिति है, इसलिए मिथ्या है। तो कहते हैं अयम चिदाभासो, टीका देख लीजिए, अयम चिदाभासो मायिको। यह चिदाभास क्या है? मायिक है। अरे दर्पण में प्रतिबिंब कब तक है? जब तक दर्पण है, मतलब उसकी उपाधि है तब तक है। उपाधि हट गई, प्रतिबिंब हट गया, मतलब जिसके जिसको लेकर के जो आता है वो वास्तविक होता नहीं है, वो मिथ्या होता है। उपाधि हट गई, वो हट गया। जैसे घटाकाश कब तक कहेंगे हम, जब तक घट है। जो नाम आए ना, आकाश को नाम आया घटाकाश, तो वो घटाकाश कैसा है, मिथ्या है। घट हट गया तो घटाकाश नाम ये क्या है ना, व्यवहार नहीं हो पाता है। इसी तरह ये उपाधि है, उपाधि के कारण क्या है, वो मिथ्या है। माईको मृषात्मक, माईक है अर्थात मृषात्मक है अर्थात मिथ्या है। श्रुति कहती है जीवेशा जीवेशौ अवभासेन करोति। नृसिंह उत्तरतापनीय उपनिषद है, उसमें कहते हैं कि जीव और ईश ये कैसे है, आभास है अर्थात मिथ्या है। विचार, विचार तो ये वृत्त्यात्मक चीज है। ये विचार क्या चीज है, वृत्त्यात्मक चीज है। विचार भी मिथ्या में ही आ जाता है क्योंकि वृत्ति है ना, वो तो विचार करो तो विचार तो एक वृत्ति का विषय है ना, वृत्ति बनेगी तभी तो विचार बनेगा। मुझे भी सब कुछ, आत्मा को छोड़ करके सब कुछ मिथ्या है क्योंकि विचार भी रहेगा नहीं। जैसे मान लीजिए वो मिथ्या, तभी मिथ्या इसलिए है क्योंकि वो रहेगा नहीं। आज का विचार कल रहेगा, संस्कार भी नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। संस्कार तब तक ही रहता है जब तक वो वस्तु आपके सामने है। हाँ नहीं, जो भी संस्कार तभी बनते हैं जब विषय हमारे सामने हो, अथवा आप किसी वस्तु का अनुभव करें तब उसका संस्कार बनता है। संस्कार किसका बनता है, जिसका जिसका हम अनुभव करते हैं उसका संस्कार बनता है, और संस्कार ही फिर बाद में वासना में परिणत होता है, और फिर वही वासना की आकृति दोबारा उसी तरह वस्तु को क्या है चाहने की इच्छा निर्माण करती है। तो आत्मा के सिवा, उस चैतन्य के सिवा सब कुछ क्या है, मिथ्या में आ जाता है। विचार भले ही वर्तमान में, तो कल का विचार तो आज तो नहीं रहा, निकल गया वो विचार। इसलिए शरीर पात होने तक विचार की आवृत्ति करनी है, सतत विचार करते रहना है। अंत काल में यदि हमारा विचार मैं ब्रह्मा हूं, और ये विचार होते हुए क्या हमारा शरीर छूट गया, बस हमारा काम बन गया। अंत काल में विचार रहना चाहिए अर्थात विवेक, ये विवेक रहना चाहिए, बस वो विवेक चला जाएगा। जैसे अभी हमें सोना है, काम करके थक गए, हमें सोना, ये विचार किया। अब ये विचार क्या, मुझे सोना है, मुझे सोना है, मैं बहुत थक गया सुबह से काम करते करते, विचार क्या मुझे सोना है, मुझे सोना है, मुझे सोना है, ये जब तक बोलते रहेंगे मतलब आपको विचार को भी क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और छूट जाता है। नहीं, सोने के बाद नहीं, पहले ही छोड़ना पड़ता है, तभी तो वो नींद आएंगे, वो छोड़ना पड़ेगा। माने मुझे सोना है, इस वृत्ति ने किस वृत्ति को हटा दिया, काम वृत्ति को हटा दिया, मतलब मुझे ये करना था, ये करना, वो करना, वो करना, ये जो वृत्ति है, इस वृत्ति से किसने हटाया, मुझे सोना इस वृत्ति ने हटाया। हाँ, तो वो भी सब टोटल, पर इतना ही है कुछ ज्यादा दिन तक चलते हैं, कुछ जो है ज्यादा ज्यादा महीने तक चलते हैं, कुछ ज्यादा वर्षों तक चलते हैं, कुछ अनंत जन्मों तक चलते हैं, समझ गए। सभी विचार सब समय तक नहीं रहते। हम उन विचारों में कितने देर तक रमे हैं उस पर निर्भर है। हाँ, वो हमेशा रहेगा। मतलब हम जितना ज्यादातर तक जिस विचार में रहेंगे वो विचार उतने ही ज्यादा देर तक टिके रहेंगे। हमेशा जिसका हम बार बार आवर्तन करेंगे वही क्या होते रहेंगे, उसका दृढ़ संस्कार होता रहेगा और उसको मिटाने के लिए भी उतना ही ज्यादा समय लगता है। क्योंकि हम ज्यादा उससे हम संगठित हो गए, चिपक गए। ज्यादा चिपकेंगे तो पक्के हो गए ना, जितने पक्के होंगे तो उतना ही उसको तोड़ने के लिए समय लगेगा। गांठ जितनी पक्की लगाओगे उसको खोलने के लिए भी उतनी ताकत लगेगी ना। इसी तरह हमारे संस्कार, हमारे विचार जिस जिस विषय में है, वो विचार वो संस्कार हमने कितना किया है उस संस्कार को उस विचार को, उसके ऊपर है उसको कितनी देर लगना। मैंने कम समय में छूटेंगे क्या ज्यादा समय में छूटेंगे वो संस्कार विचार, वो हमारे अधिकता के ऊपर है, न्यून अधिकता के ऊपर है। कितनी देर तक आप उसमें रहे, जितने ज्यादा देर तक रहे वो उतने देर क्या करेगा, वो पक्का होता रहेगा और उसको उतना ही समय लगेगा छूटने में। आगे का विषय लोग हम लोग कल कर लेते। हरिओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।